کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مکہ کا ماحول بہت ہی ٹینس تھا, یہ کوئی پرسکون جگہ نہیں رہی تھی. میں جدھر جا رہی تھی وہاں ظلم زیادتیاں دیکھ رہی تھی, بد کلامی, مذاق, تشدد. میں نے سوچا اس جگہ پر مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے. میں کو تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی. میرے ذہن میں وہ مکہ تھا جو ہمارے زمانے میں 21ویں صدی میں ہوتا تھا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس مکہ میں مسلمان ہونا ایک جرم ہے, اسلام ایک گالی ہے اور ایک ٹربل ہے جو آپ اپنے لیے کریٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. یہاں تو دن اور رات صرف ایک ہی موضوع ہے, لگتا ہے سب کو ایک ہی پرابلم ہے. اس سوسائٹی میں لگتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو کیسے کچلا جائے, ان کے جذبہ ایمانی کو کیسے توڑا جائے. اور سب سے دلچسپ بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ میں دیکھ بھی رہی ہوں لوگوں پر ٹارچر ہو رہا ہے, میں دیکھ رہی ہوں لوگ کیسے ستائے جا رہے ہیں. میری تو چیخیں نکل جاتی ہیں یہ مناظر دیکھ کے, مگر یہ لوگ سہ رہے ہیں اور میں ان کی ہمت کی داد دیتی ہوں. عورتیں ہیں یا مرد یا چھوٹے لڑکے, ایسے ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پہ کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کے ایمان تو چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہیں. یہ جانے دینے کو تیار ہیں, کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اور یہی چیز ان کافروں کو اذیت میں ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایسا کریں, وہ کون سا ایسا حربہ ہوگا کہ ایک ایمان والے کے اس جذبے کو کچل دیں, توڑ دیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں تو کریں کیا. میں دیکھ رہی ہوں اس چھوٹی سی مکہ کی بستی میں کتنی فرسٹریشن ہے. سردار سٹریس میں, مسلمان سٹریس میں. سرداروں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا ہے. اگر ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے جس سے وہ اور تل ملاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں. میں حرم میں داخل ہوئی تو دیکھا بڑے بڑے رئیس کعبہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں. آج لگتا ہے کوئی خاص بات ہے. ان میں سے ایک کہنے لگا محمد کو بلا کے لاؤ, آج فیصلہ ہو ہی جائے. ایک غلام دوڑتا ہوا گیا اور کچھ ہی دیر میں میں نے دیکھا میرے پیارے نبی تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. میں جب بھی آپ کی طرف دیکھتی تھی آپ کی عظمت, آپ کی محبت میرے دل میں اور بڑھ جاتی تھی. आपका ताबनाक चेहरा देखकर मैं मुस्कुराई। मेरे नबी आ रहे हैं, खुश हैं। लगता है वो ये समझ रहे हैं कि ये काफिर ईमान लाने वाले हैं। एक उम्मीद उनके चेहरे पे नजर आ रही है। और मैं जानती हूं कि मेरे नबी को कितनी हिर्स है इन सब लोगों के ईमान लाने के लिए। मेरे नबी चलते भी आए और इनके सामने बैठ गए। सरदार किस्म के ये लोग कहने लगे, आप हमारे बड़ों को गालियां देती हैं। मैं चौंक गई, ये कब हुआ? मेरे नबी ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी। आप हमारे दीन में ऐब लगाते हैं, आप हमारे बुतों को बुरा कहते हैं। मैं एकदम दोबारा हैरान हुई, मेरे नबी ने तो कभी भी इनके बुतों को बुरा नहीं कहा। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जरूर कहा है कि ये बुत तुम्हें नफा और नुकसान नहीं देते, इनको मत पूजो। ये कितना बड़ा बोहतान है मेरे नबी पे। लेकिन मेरे नबी खामोशी से सुन रहे हैं। आप हमें बेवकूफ समझते हैं। मेरे नबी ने तो तुम लोगों को बेवकूफ नहीं समझा, आपने हमारे दरमियान इख्तलाफ डाल दिए। ये लोग मुसलसल बोहतान बांधते जा रहे हैं। अब बताओ सच सच कि इस ढोंग रचाने से तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते क्या हो? उनमें से एक कुछ बुलंद आवाज से बोला, अगर तुम ये चाहते हो कि हम चंदा जमा करके तुम्हें दे दें और इस तरह से तुम हम सब में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ, तो हम इसके लिए तैयार हैं। अगर तुम शर्फ और मंजिलत चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हें सरदार बना लेते हैं। अगर तुम पे कोई जिन का साया हो गया तो हम तुम्हारा इलाज करवा देते हैं। मैं उसी वक्त समझ गई, ये लोग हर हरबा आजमा चुके हैं, इसीलिए अब हार मान के इनके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि मेरे नबी को लालच देके उनको उनके मिशन से रोक दें। मेरे नबी ने इनकी बातों के जवाब में एक बलीग बात फरमाई और आखिर में फरमाया, अगर तुम मेरी दावत को रद्द कर दोगे तो मैं अल्लाह के हुक्म के लिए इंतजार करूंगा। ये सुन के सरदारों ने एक और पैंतरा बदला। उनमें से एक बोला, अच्छा अगर तुमने ये सब नहीं मानना तो जरा गौर करो, हमारा इलाका इस कदर तंग दस्त है, पानी की कमी है, जरूरियात जिंदगी की किल्लत है, तो तुम्हें तो तुम्हारे रब ने मबूस फरमाया है ना, तो उससे दुआ करो कि ये पहाड़ अपनी जगह से हटा दे ताकि हमारा इलाका ही खुला हो जाए और हमारे इलाके की जमीन हमवार और कुशादा हो जाए। जैसे शाम और इराक में दरिया बहते हैं, यहां पे भी दरिया बहने लगे। हमारे मरे हुए बाप दादों को जिंदा कर दो, खासकर कुसई को। कुसई तो बहुत सच्चा और बड़ा समझदार था, फिर हम उससे पूछ लेंगे कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर कुसई ने कह दिया कि तुम सच्चे हो तो हम तुम्हें मान लेंगे। क्या? मैं चौंक गई, ये कैसी बेकार बातें कर रहे हैं? मेरे नबी उनको कुछ और पैगाम दे रहे हैं और ये इतनी फजूल डिमांड्स उनको कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इन कामों के लिए नहीं भेजा। कितना सुकून था आपकी आवाज में और कितनी नरमी थी। ना जोश में आए, ना जज्बात में, ना झगड़ा किया, ना इनकी फजूल बातों के जवाब में कोई फजूल बात की। वो ऐसे हठ धर्म थे कि उनमें एक सरदार ढिठाई से बोला, अच्छा चलो हमारे भले के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते तो मान लेते हैं हम, मगर कम अज कम अपना तो कुछ भला कर लो, कुछ अल्लाह से मांग ही लो अपने लिए, और ज्यादा नहीं तो एक फरिश्ता ही मांग लो जो तुम्हारे साथ रहा करे। या अल्लाह, ये कैसे मुतालिबात हैं। ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग और बेतुकी बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा था मैं इस माहौल में रहते रहते ज़हनी मरीज बन जाऊंगी, मैं पागल हो रही थी। यानी वो क्या बता रहे हैं और तुम आगे से क्या कह रहे हो? मेरे नबी ने उनकी ये लंबी चौड़ी बातें सुनने के बाद इतना फरमाया, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि अपने परवरदिगार से ऐसी चीजों का सवाल करूं। मैं तो नजीर और बशीर बना के भेजा गया हूं। एक सरदार भड़क के बोला, अच्छा फिर आप अपने रब से कह देना कि वो हमारे ऊपर आसमान से ही कोई टुकड़ा गिरा दे, जैसे आप आए दिन हमें धमकियां देते हैं। अब तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये लोग बात को छोड़ के नहीं दे रहे, एक के बाद एक बेतुकी बात निकाले जा रहे हैं। मेरा सर घूमने लगा, मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं पा रही थी मजीद सुनने की। मैं एक तरफ होके बैठ गई। ये मेरे नबी की बर्दाश्त थी कि तहम्मुल से उनकी बातें सुन रहे थे और फिर उनको कोई बुरा भला नहीं कह रहे थे, कोस नहीं रहे थे, बद्दुआ नहीं दे रहे थे, बल्कि बहुत मुलायमत के साथ, बड़ी समझदारी के साथ मुख्तसर बात से उनको जवाब दे देते थे। काफी देर की इस बहस और गुफ्तगू के बाद मेरे नबी इस मजलिस से उठ गए और वापस तशरीफ ले जाने लगे। मैंने देखा उनके पीछे उनका फुफ्फीजाद उबैदुल्ला बिन उबई अभी उमैया भी चल दिया। मैं भी इनके पीछे हो ली। वो बोला, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने आपके सामने कई तजवीजें रखी मगर आपने तो उनकी एक नहीं मानी। उन्होंने चंद बातें अर्ज की जिन में आप के लिए ही फायदा था मगर आपने नहीं मानी। उन्होंने ऐसी बातें आपको कहीं जिनसे हमें पता चलता कि आपका अल्लाह के आगे क्या मर्तबा है, क्या मकाम है, मगर आपने वो भी नहीं मानी। फिर उन्होंने आपसे अपने लिए कुछ मांगने को कहा तो आपने उसका भी इनकार कर दिया। आखिर में तो उन्होंने ये कह दिया कि चलो और कुछ नहीं तो वो अजाब ही ले आओ जिसकी हमें रोज धमकियां देते हो, हमें डराते हो, और आपने वो भी ना माना। अल्लाह की कसम मैं तो हरगिज़ आप पे ईमान नहीं लाऊंगा, चाहे आप मेरे सामने आसमान पे सीढ़ी लगा के चढ़ जाएं, चाहे अपने रब से आप चिट्ठी लिखवा के ले आए, या आपके साथ फरिश्ते भी उतर आए, वल्लाही अगर आप अब ये सब कुछ कर भी देंगे तो मैंने नहीं मानना। मेरा दिल इस कदर दुखी हुआ और मैं देख रही थी मेरे नबी के चेहरे से कर्ब नुमाया था, आपके चेहरे पे गम था। आखिर एक इंसान कितना बर्दाश्त करे, कितना बर्दाश्त करे, वो क्या सोच के खुशी खुशी आ रहे थे और इन्होंने आगे से क्या जवाब दिए। मेरे नबी खामोशी से अपने घर में दाखिल हुए मगर वहां भी तो हालात कुछ अच्छे नहीं थे। दोनों बेटियां उम्मे कुलसूम और रुकैया तलाक लेके घर में बैठी हुई थी। उनका जख्म अलग था। मेरे नबी एक तरफ होके नमाज पढ़ने लगे, लगता ये नमाज ही उनको हौसला देती थी। मगर अभी आप खड़े ही हुए थे कि हमसायों ने एक बकरी की बच्चा दानी दीवार के ऊपर से ऐसे निशाना लगा के फेंकी कि सारी ही जाके मेरे नबी पे गिरी। मुझे सख्त गुस्सा आया मगर इसके बरक्स मेरे नबी ना गुस्से में आए ना उनको बुरा भला कहा, जबकि मैं गुस्से में खौल रही थी। मगर वो काम थे बिल्कुल ठंडे, बस एक लकड़ी उठाई और गलाजत को एक तरफ फेंक दिया। और ये तो लगता है रोज का ही मामूल था। जब हमसाए भी दुश्मन हो तो इंसान किधर चैन पाए। घर आते तो मेरे नबी के सामने ऐसे हालात होते, बाहर जाते तो वहां कोई ना कोई फजूल बातें करने के लिए खड़ा होता। जाएं तो किधर जाएं, वो जिनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है अल्लाह के यहां, कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे। मुझे अपने दौर के स्ट्रेसेस याद आए, जिनको लेकर मैं हर वक्त बैठी रहती थी और रोना रोती रहती थी कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है। वो तो कुछ भी नहीं थे, वो कितने मामूली थे, वो कितने बेमाना थे, बेवकत थे। छोटी छोटी बातों को मैंने पहाड़ के बराबर बनाया होता था, और यहाँ 24/7 24 घंटे की अजियत, 24 घंटे की टेंशन, स्ट्रेस, और चारों तरफ से जाए तो इंसान जाए कहाँ। और तो और हमसाए भी जब अबू लहब हो और दूसरी तरफ उकबा बिन अबी मुईत हो, तो उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती थी। अभी कल ही की तो बात थी कि उकबा गोबर से भरा हुआ टोकरा लाकर मेरे नबी के घर के दरवाजे के आगे फेंक गया था। मेरे नबी अपनी प्यारी बीवी खतीजा के साथ बैठे थे और दुख सुख कर रहे थे। यूं लगता था खतीजा ही हैं जो उनकी गम गुसार हैं, सारी बातें सुन के और उनको तसल्ली देने वाली। इनके सिवा कोई नहीं था जिनके साथ मेरे नबी अपने दिल का हाल बयान करते। और आज तो वो खतीजा को अबू बकर पर होने वाले वहशियाना तशद्दुद के बारे में बता रहे थे। मैं सुन रही थी और मेरे आंसू जारी थे। किसी को इतना मारा जाए और इतनी बेरहमी से, मेरे नबी बता रहे थे कि उकबा ने तो इस कदर मारा उनको, और खास तौर पे उनके चेहरे को ऐसे निशाना बनाया कि जख्मी होने के बाद उनका हाल ये था, नाक और चेहरे में पहचान नहीं हो रही थी। फिर वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट पे चढ़ के मुसलसल ज़र्बे लगाता रहा। मेरे नबी दुख के साथ ये बातें बयान कर रहे थे। उन पर जो अपनी आजमाइशें गुजर रही थी वो तो थी, जो ईमान वाले प्यारे साथी थे उनके हालात देख के मजीद दुखी हो रहे थे। ना अपनी जिंदगी आसान थी और ना अपने साथियों की। या अल्लाह, ये कितना मुश्किल वक्त है और यहां रहना कितना मुश्किल है। मैं जो मक्का देखती थी, ऊंची ऊंची इमारतों से सजा हुआ वो मक्का जिसमें तायुशात की इंतहा थी, वो मक्का जिसमें सड़कें और पुल थे, वो मक्का जिसमें पैसे की रेल पेल थी, वो मक्का जिसमें हर तरफ अजान की आवाजें बुलंद थी, वो मक्का तो 21वीं सदी का मक्का कुछ और था, और ये मक्का तो बिल्कुल उलट है। वाकई यहाँ पे जिंदगी कितनी मुश्किल है, वाकई ये लोग जन्नत के काबिल हैं, वाकई मैं और मेरे जमाने में रहने वाले कोई भी लोग इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने आंखें बंद की और जब खोली तो देखा मैं वापस हरम में हूं। अबू जहल और उसके कुछ साथी खुशगपियों में मसरूफ हैं। इतने में दूर से मुझे एक ताकतवर, मजबूत, मुअज्ज़ज़ नौजवान तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। गैरत उसके चेहरे से झलक रही थी और वो सख्त गुस्से में था। वो तेजी से चलता हुआ अबू जहल के पास आया और पूरी ताकत के साथ अपनी कमान उसके सर पे दे मारी। मेरा दिल खुशी से उछल गया। कोई तो है जो अबू जहल के साथ भी ऐसा सलूक करने वाला हो। अबू जहल को अच्छा खासा जख्म लगा वो नौजवान बोला, क्या तूने मोहम्मद को बुरा कहा है? मैं अपने नबी का नाम सुन के फौरन चौकन्नी हो गई। मेरा दिल उस नौजवान की अजमत और मोहब्बत से भर गया। कोई तो खड़ा हुआ मेरे नबी के लिए। मेरे दिल से बेख्तियार दुआएं उसके लिए निकली। अबू जहल के कबीले के लोग फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। अभी लग रहा था यहां पे खून खराबा होने वाला, अभी जंग शुरू हो जाएगी, मगर अबू जहल ने उनको रोक दिया और बोला, अबू अम्मारा को छोड़ दो, अल्लाह की कसम मैंने उसके भतीजे को वाकई बहुत बुरी गालियां दी थी। अच्छा अब मैं समझी, ये तो हमजा रजी अल्लाह ताला हूँ है। मुझे बहुत इश्तियाक था इनको देखने का, मुझे फखर हुआ उनके ऊपर। अबू जहल के कबीले के लोग पीछे हटने लगे और मेरे नबी के चचा हमजा बोले, अगर तू मोहम्मद को बुरा भला कहता है तो याद रख, मैं भी उसी के दीन पे हूं, मैं भी वो ही कहता हूं जो वो कहता है। अगर अब तुझ में हिम्मत है तो मेरे साथ लड़। मेरी खुशी की इंतहा ना रही, शुक्र है ऐसे माहौल में भी कोई तो खड़ा हुआ। और मेरे नबी का दिल कितना खुश होगा जब वो ये बात सुनेंगे। भले ये इस अंधेरी रात के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी जिससे अंधेरे तो दूर नहीं होंगे, मगर कुछ उम्मीद तो बढ़ी कि ऐसा कोई बंदा मुसलमान हुआ जो मेरे नबी के लिए और इस कलमे के लिए खड़ा हो सके। आज का एपिसोड यहाँ तक इंशाल्लाह ताला, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।